काठमांडू राजनगरी के शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, आज धर्म गंगा का ये दूसरा प्रवाह, कल ये बात समझने की कोशिश की कि धर्म क्या है और धर्म तथा संप्रदाय में क्या अंतर है, थोड़े में फिर समझ लें। धर्म सार्वजनीन होता है, सबका होता है, और धर्म के नाम पर जो संप्रदाय चलते हैं वो सीमित लोगों के होते हैं। जैसे हिंदू धर्म केवल हिंदुओं का होके रह जाएगा, बौद्ध धर्म केवल बौद्धों का होके रह जाएगा, जैन धर्म जैनियों का, मुस्लिम धर्म मुसलमानों का, ईसाई धर्म ईसाइयों का, सिख धर्म सिखों का, पारसी धर्म पारसियों का, सबका नहीं होगा। और धर्म तो सबका होगा, इसीलिए धर्म को संप्रदाय के साथ नहीं जुड़ने दें। धर्म का अपना एक महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। धर्म की अपनी एक सत्ता है, बहुत महान सत्ता है, उसे कहीं भुला न दें, अन्यथा अपनी ही हानि कर लेंगे। अपने यहाँ की पुरानी भाषा में धर्म कहते थे स्वभाव को, प्रकृति को, नेचर को, लक्षण को। जिसका जो स्वभाव उन दिनों की भाषा में, उसका वो धर्म। जैसे आज भी कहें अग्नि का धर्म जलना और जलाना, तो अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना। ठीक इसी प्रकार हमारे मानस में जो विकार जागते हैं, क्रोध जागे, द्वेष जागे, दुर्भावना जागे, ईर्ष्या जागे, अहंकार जागे, वासना जागे, भय जागे, कोई विकार जागे, प्रत्येक विकार का ये स्वभाव है व्याकुल होना और व्याकुल करना। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका नेचर है। और मन अगर विकारों से मुक्त हो जाए तो विकार विमुक्त चित्त का स्वभाव है मैत्री से भर जाना, करुणा से भर जाना, सद्भावना से भर जाना, तो शांति से भर जाना, सुख से भर जाना, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका नेचर है। अपने यहाँ पुराने जमाने में इसी को धर्म कहते थे। वो चित्त वृत्तियाँ जिनकी वजह से हमारे भीतर व्याकुलता जागती है, बेचैनी जागती है, अशांति जागती है, उससे हम दूर रहें। और वो चित्त वृत्तियाँ जिनकी वजह से हमारा चित्त निर्मल होता है, सुख और शांति से भर जाता है, सौमनस्यता से भर जाता है, उसे हम धारण करें। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में सबका कल्याण है। इसमें कोई हिंदू पने की बात नहीं है, कोई बौद्ध पने की, कि जैन पने की, कि ईसाई पने की कोई बात नहीं। ये कानून सब पर लागू होता है। जैसे आग आग है, जलाती है, तो आग हिंदू नहीं होती, उसका जलना हिंदू नहीं होता, न बौद्ध होता है, न जैन होता है, न ईसाई होता है, न मुस्लिम होता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे जो विकार हैं और उन विकारों की वजह से जो व्याकुलता होती है, वो न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई है, और विकार न हो, चित्त निर्मल हो जाए, उस निर्मल चित्त से जो शांति आती है, सुख आता है, वो भी न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न सिख है, न ईसाई है, धर्म है। ये नियम है प्रकृति का, ये विश्व का विधान है, ये कुदरत का कानून है। इसी को उन दिनों की भाषा में धर्म नियामता कहते थे। ये ऐसा नियम है जो सार्वजनीन है, सब पर लागू होता है, अल्पजनीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से लोगों पर ही लागू होता हो, सब पर न लागू होता हो, सब पर लागू होता है। जो अपने मन में विकार जगा लेगा वही व्याकुल हो जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नेपाली हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, रूसी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विकार जगाया है ना, व्याकुल होगा ही, दुनिया की कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। ऐसे ही विकार विमुक्त हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, बड़ी शांति प्राप्त करेगा, क्योंकि निर्मल चित्त में सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे, मैत्री, करुणा, सद्भावना, और मन बड़ा शांत होने लगेगा, बड़ा सुख महसूस करने लगेगा। सब पर लागू होता है। कोई हिंदू अपने मन के विकारों को दूर कर ले, वो भी उतना ही सुख शांति महसूस करेगा। कोई बौद्ध कर ले, कोई जैन कर ले, कोई ईसाई कर ले, कोई सिख कर ले, अपने मन को विकारों से विमुक्त किया कि सुख शांति आई। अपने विकारों में, अपने मन में विकार जगाए कि दुखी हुआ, बेचैन हुआ। ये सर्वव्यापी है, सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, अल्पदेशिक नहीं। कि किसी किसी देश में तो ये नियम लागू होता है, बाकी देशों में नहीं होता, सब जगह ये नियम लागू होता है। इसी तरह सार्वकालिक है, सब समय ये नियम लागू होता है, इसीलिए इसको सनातन कहा। धर्म हमेशा सनातन कहलाता है, क्योंकि इसके नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। संसार की और सारी बातें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर संसार के ये नियम, धर्म का ये कानून, ये विधान, ये रित, ये नहीं बदलता। आज के हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले भी कोई आदमी अपने मन में विकार जगाता था तो उसी प्रकार व्याकुल होता था जैसे आज कोई विकार जगाकर व्याकुल होता है, अथवा हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष के बाद भी कोई विकार जगाएगा उतना ही व्याकुल होगा। आज के हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले कोई व्यक्ति अपने मन को निर्मल करके सुख शांति महसूस करता था, वैसे ही आज भी करता है, वैसे ही करोड़ों वर्ष के बाद भी करेगा। इस माने में सनातन है, सार्वकालीन है, अल्पकालीन नहीं। कि थोड़े समय के लिए तो ये कानून लागू होगा, उसके बाद नहीं होगा। संप्रदाय ऐसा कभी नहीं होता। संप्रदाय न सार्वजनीन होता है, न सार्वदेशिक होता है, न सार्वकालीन होता है। तो धर्म को समझें, स्वभाव है, प्रकृति के नियम है, उन नियमों के अनुसार, उन नियमों को समझते हुए हम अपना जीवन ढाल लें, सुखी हो जाएंगे। उन नियमों को तोड़ते हुए हम जीवन जिएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, औरों का नुकसान करेंगे। बहुत सीधी सीधी बात होती है धर्म की, लेकिन लोगों ने उलझा दिया, न जाने कितने प्रकार के कर्मकांडों में उलझा दिया, न जाने कितने प्रकार के दार्शनिक मान्यताओं में उलझा दिया, न जाने कितने प्रकार के सांप्रदायिक बेड़ों में बांध बांध करके, बाड़ों में बांध बांध करके उलझा दिया। धर्म का शुद्ध स्वरूप, धर्म का शुद्ध अर्थ लुप्त होता चला गया, लुप्त होता चला गया। मनुष्य समाज ने अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली। तो बहुत अच्छी तरह से समझें, धर्म का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति, नेचर, कुदरत का कानून, विश्व का विधान, जो सब पर एक जैसा लागू होता है, अत्तनो स्वभावं धारेति इति धम्मो। ऐसे ही अत्तनो लक्षणं धारेति इति धम्मो। लक्षण क्या है? धर्म के अपने लक्षण होते हैं। क्या लक्षण है धर्म के? अपने यहाँ कहा गया धर्म के लक्षण समझाते हुए, धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह, शौचमिन्द्रिय निग्रह, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। क्या धर्म के 10 लक्षण हैं? सद्गुण हैं। चित्त निर्मल होगा, ये सद्गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, आदमी को जीने की कला आ जाएगी, स्वयं सुख शांति का जीवन जिएगा, औरों के लिए सुख शांति का वातावरण निर्माण करेगा, समाज सुखी हो जाएगा, संसार सुखी हो जाएगा, सारे प्राणी सुखी हो जाएंगे। ये सद्गुण कैसे आए? जब तक चित्त में मैल ही मैल भरा है, सद्गुण आने वाले नहीं हैं। सद्गुण आएंगे चित्त का मैल निकलने के बाद। चित्त का मैल जितना जितना निकलता जाएगा, चित्त जितना जितना निर्मल होता जाएगा, निर्विकार होता जाएगा, ये सद्गुण अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और धर्म अपना लक्षण बताना शुरू कर देगा। इस आदमी में धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण हैं माने ये व्यक्ति धर्म का जीवन जीता है। मन में जब मैल होता है, मन में जब मैल होता है तो वाणी से कोई कर्म करें, दूषित कर्म ही होगा, अकुशल कर्म ही होगा, हानिकारक कर्म ही होगा। मन में जब मैल है तो शरीर से कोई कर्म करें, दूषित कर्म ही होगा, हानिकारक कर्म ही होगा। ठीक इसके विपरीत, मन जब निर्मल है, सद्गुणों से भर गया है, तो वाणी से जो काम करें कुशल ही होगा, मंगल ही होगा, भला ही होगा। शरीर से जो काम करें कुशल ही होगा, मंगल ही होगा, भला ही होगा। मैले चित्त से अच्छा काम किया नहीं जा सकता, निर्मल चित्त से बुरा काम किया नहीं जा सकता। बड़े सीधे सीधे नियम हैं धर्म के। हम इन नियमों को तो भूल जाएं और बाकी बातों में, धर्म के नाम पर और बाकी बातों में अपने आप को उलझाए रखें, तो भाई मनुष्य जीवन जो इतना कीमती जीवन है उसे वैसे ही खो देंगे, इसका कोई लाभ नहीं ले सकेंगे। मनुष्य जीवन का लाभ लेना है तो धर्म को समझेंगे, सही अर्थ में समझेंगे और उसे धारण करने के काम में लग जाएंगे। और ये काम एक एक व्यक्ति को करना होता है। एकमेव चरेति धम्मं। धर्म एक एक व्यक्ति धारण करता है, समूह नहीं, कोई भीड़ नहीं। हम कहें ये हिंदू समाज है, धर्म पालन करता है, ये बौद्ध समाज है, धर्म पालन करता है, ये सिख समाज है कि जैन समाज है कि ईसाई समाज है, नहीं भाई नहीं। एक बहुत बड़ा समूह है, सारे के सारे लोग, उस समूह के सारे लोग निर्मल चित्त वाले हों, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उनमें से कुछ लोग होंगे जो निर्मल चित्त वाले हैं, जो विकारों को दूर करने का काम करते हैं, मन को निर्मल करके सद्गुणों से भरते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, ये व्यक्ति धार्मिक हैं। कुछ लोग धार्मिक होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो मन को मैला रखते हैं, शरीर और वाणी से दुष्कर्म करते हैं, तो अधार्मिक होंगे, धार्मिक नहीं होंगे। तो समूह में कुछ धार्मिक, कुछ अधार्मिक, धार्मिक या अधार्मिक व्यक्ति होता है, समूह नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेगा तो हर व्यक्ति अपने आप को सुधारने का काम करेगा। जो अपने आप को नहीं सुधार सका, अरे वो समाज को कहाँ सुधारने जाएगा, समूह को कहाँ सुधारने जाएगा, धोखे में अपना जीवन बिता देगा। अपने आप को सुधारना है। चाहते तो सभी हैं कि सारा मनुष्य समाज बड़ा सुखी हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए, बड़ी शांति आए, हमारे देश में शांति आए, सारे देशों में शांति आए, सारे विश्व में शांति आए। कैसे आए शांति, इस पर चिंतन नहीं करते। व्यक्ति व्यक्ति के मन में शांति नहीं आई तो समूह में शांति कहाँ से आएगी। सारा जंगल मुरझा गया, पीला पड़ गया, और हम चाहते हैं कि फिर हरा भरा हो जाए। चाहते हैं, पर केवल चाहने से क्या होगा। उस जंगल के एक एक पेड़ में, एक एक पेड़ की जड़ों में पानी जाएगा, एक एक पेड़ लहलहाएगा, हरा हो जाएगा तो सारा जंगल हरा हो जाएगा। एक एक पेड़ तो सुधरे नहीं, और हम चाहें कि सारा जंगल सुधर जाए, होने वाली बात नहीं। एक एक व्यक्ति सुधरे नहीं, और हम चाहें कि सारा समाज सुधर जाए, सारा देश सुधर जाए, सारा संसार सुधर जाए, होने वाली बात नहीं, असंभव बात है। इसलिए धर्म हमेशा एक एक व्यक्ति का होता है। एक एक व्यक्ति को धर्म धारण करके अपने दुर्गुणों से, चित्त के मैल से छुटकारा पाकर, चित्त को निर्मल करके उसे सद्गुणों से भरता है, उसने जीवन जीने की कला सीख ली। अब वो सही रास्ते पर चलना उसे आ गया, अपना भी मंगल करने लगा, औरों का भी मंगल करने लगा। और जिसने अपने विकार निकालने का काम किया नहीं, कभी जाना भी नहीं कि विकार कैसे निकाले जा सकते हैं, वो आदमी हमेशा मैले चित्त का जीवन जीता है, अपने आप को भी दुखी रखता है, औरों को भी दुखी बनाता है। जब जब विकार जगाता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है, सारे वातावरण में व्याकुलता भर देता है। उस समय जो उसके संपर्क में आए उसी को व्याकुल बना देता है, और वाणी से, शरीर से जो काम करता है वो सारे दूषित ही दूषित करता है, बड़ा अमंगल करता है। धर्म नहीं आया उस व्यक्ति के जीवन में, धर्म नहीं आया, क्योंकि वो जाना ही नहीं कि धर्म कैसे धारण किया जाए, क्योंकि वो जाना ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म को जब तक हिंदू धर्म कहता रहा, बौद्ध धर्म कहता रहा, जैन धर्म कहता रहा, ईसाई धर्म कहता रहा, तब तक धर्म नहीं समझ में आया, जरा भी नहीं समझ में आया। जिस दिन धर्म को धर्म कहने लगा, उसके साथ ये जो खपच्चियाँ लगी हैं, ये क्रचर्स लगे हैं, इनको एक तरफ कर दिया, इनका लेन देन नहीं। धर्म अपने आप में स्वतंत्र है, महान है, बहुत बड़ी सत्ता है उसकी, वो सारे विश्व में व्यापा हुआ है, उस कानून को सबको मानना है, सबके लिए कल्याणकारी है। ये बात समझ करके धर्म के रास्ते चलने लगा, कदम कदम चलते चलते अपना कल्याण साधने लगा, औरों का कल्याण साधने लगा। धर्म के रास्ते चलने के लिए धर्म के तीन महत्वपूर्ण चरण होते हैं, तीन सोपान होते हैं, तीन सीढ़ियां होती हैं। ये तीन पांवड़े ऐसे हैं कि इन पर चल करके सारे लोगों को माप लेगा, और सारे लोगों के परे की लोकोत्तर अवस्था तक पहुंच जाएगा, मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा। ये तीन चरण में सारा धर्म समा गया। हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, धर्म समा गया। क्या तीन पांवड़े हैं धर्म के? पहला है शील, सदाचार। दूसरा है समाधि, मन को वश में करना, मन का मालिक होना। और तीसरा है प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान नहीं, सुना सुनाया ज्ञान नहीं, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान नहीं, अपने भीतर अनुभूति के स्तर पर जो ज्ञान जागा, उस ज्ञान से ही चित्त के मैल दूर होते हैं, पुराने कर्म संस्कार निकलते हैं, नया दूषित कर्म बना नहीं सकता, पुराने जितने हैं उनसे छुटकारा होता है, उसे प्रज्ञा कहा। शील, समाधि, प्रज्ञा। तो आज पहले चरण की बात करें, शील सदाचार की। शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है, उसे शील कहते हैं, उसे सदाचार कहते हैं। शरीर या वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे औरों का अमंगल होता है, औरों का अहित होता है, ऐसा कोई काम नहीं करें। जैसे कल ये धर्म शब्द का इतिहास थोड़े में समझा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका विकास हुआ और किस तरह से इसके अर्थ बदलते बदलते किस अवस्था तक पहुंचा, ऐसे ही शील सदाचार का भी अपना इतिहास है। हम भूल बैठे वो अलग बात है, लेकिन अपना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना। उन दिनों ये मनुष्य जाति कहीं बस्ती बसा के नहीं रहती थी, खानाबदोश की तरह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यूं घुमंतु जाती फिरती रहती थी। अपने पशुओं को लेकर के आज यहाँ चराया, कल वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, ऐसे फिरने वाली जाती थी। एक समय आया कि उनमें से कुछ लोगों ने देखा, अरे इस धरती से ऐसे पौधे उगते हैं जिनमें अनाज होता है और ये अनाज खाने में बड़ा पौष्टिक होता है, हम ऐसे अनाज क्यों ना उगाएं, ये धरती तो बड़ी उपजाऊ है, जरा सी मेहनत करेंगे तो खूब अन्न देगी, और ये इंद्र महाराज ये बड़ा दयालु है, बहुत वर्षा देगा तो खूब अन्न उपजेगा, चलो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यूं धीरे धीरे ये घुमंतु जाति के मानव एक एक जगह बसने लगे और खेती का काम करने लगे, अपने पशु भी चराते हैं वहीं और खेती का काम भी करते हैं। ये बहुत पुरानी अवस्था थी जब लोगों ने ये तय किया कि धरती माता तो सबकी है, ये इंद्र देवता सबका है, धरती पर किसी की मलकियत नहीं, सबकी है, तो मेहनत करो और जो उपजे वो बांट कर खाओ, ऐसा साम्य जीवन जिया करते थे। चली बात कुछ दिनों तक, लेकिन मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य स्वभाव है, ऐसे लोग होते ही हैं जो काम तो करना नहीं चाहते और हिस्सा बराबर का चाहते हैं। तो ऐसे निठल्ले लोग, किसी एक ने सोचा, अरे मेहनत करूंगा खेत में जाके तो भी उतना ही अनाज मिलने वाला है, न करूंगा तो भी तो मिलेगा ही, काहे मेहनत करूं, घर में आराम से लेटा रहूंगा, इधर उधर मटर गस्ती करते फिरूंगा, नहीं काम किया। उसको देख के दो ने नहीं किया, चार ने नहीं किया, बात बढ़ने लगी, तो समाज के समझदार लोगों ने देखा कि ये तो व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी, कौन काम करेगा फिर, तो बांट दिया, फिर जमीन का बंटवारा हो गया, ये तेरी जमीन। अब कर मेहनत करेगा जो उपजेगा सोखा, नहीं मेहनत करेगा नहीं उपजेगा भूखमर, हम क्या करें। यूं व्यवस्था चली कुछ दिनों तक, लेकिन जो आलसी टट्टू होता है, निठल्ला होता है, काम करने को जी नहीं चाहता, उसका स्वभाव बन गया, फिर भी नहीं काम करता, और जब अन्न उपजता है तो उसके यहाँ तो उपजा नहीं, तो पड़ोसी के यहाँ उपजा तो चुराता है, छीनता है, झपटता है, हथियाता है, अपना लेता है। ऐसे दो लोग हुए, चार लोग हुए, दस लोग हुए, समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगी। और जब आदमी निठल्ला होता है, निकम्मा होता है, काम नहीं करता, पुरुष हो या नारी हो, तो फिर मन में गंदगी उठती है, तो तरह तरह की गंदगी समाज में फैलने लगी, व्यभिचार फैलने लगा, आपस में कहासुनी होने लगी, तू मैं होने लगा, गाली गलौज होने लगा, हाथापाई होने लगी, मारपीट होने लगी, सारी व्यवस्था बहुत बिगड़ गई। तब समझदार लोगों ने फिर एकत्र होकर निर्णय किया कि भाई हम पर कोई एक शासक होना चाहिए, किसी को शासक चुन करके हम बनाएं और वो जो शासन करे वो नियम बनाए, उन नियमों के अनुसार सबको जीवन जीना पड़ेगा, जो उन नियमों का पालन नहीं करे उसे शासक दंड देवे। तो इक्ष्वाकु नाम का एक व्यक्ति जो बड़ा प्रतापी था, बलवान था, समझदार था, सब ने मिल करके उसे अपने समाज का राजा बनाया। ये मानव समाज का पहला शासक, क्योंकि सबके सम्मति से चुना गया इसलिए उसका नाम रखा गया महासम्मत। आज भी हमारे पड़ोसी देश में, ब्रह्म देश में, जो देश का प्रेसिडेंट है उसको वहाँ की भाषा में सम्मत ही कहते हैं। सबकी सम्मति से वो राजा चुना गया। अब उसने नियम बनाए और बड़े कड़े नियम बनाए। यही नियम बनाए कि कोई हत्या नहीं करेगा, हत्या करेगा हम दंड देंगे, कोई किसी की हत्या नहीं करेगा। दूसरा नियम बनाया, कोई चोरी नहीं करेगा, जो पराई वस्तु है उसे छीनेगा नहीं, चुराएगा नहीं, झपटेगा नहीं, अपनाएगा नहीं, दूसरे की वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा नियम बनाया, कोई व्यभिचार नहीं करेगा, करेगा तो दंड देंगे हम। कोई वाणी से झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलकर किसी को ठगने की कोशिश नहीं करेगा। कोई वाणी से कटु बात, कड़वी बात नहीं बोलेगा। कोई वाणी से परनिंदा की बात नहीं करेगा, चुगली की बात नहीं करेगा। वाणी से निकम्मी निरर्थक बातें नहीं करेगा, नहीं तो राज्य की ओर से दंड मिलेगा। ये चार नियम बने। सबसे पहले ये चार नियम बने, उन दिनों की भाषा में इन्हें चतुर्याम कहा गया। ये चार नियम चले चले समाज में। राजा का भय था, शासन का भय था, दंड का भय था, चले। समय बीतता गया बीतता गया। मानो समाज के किसी व्यक्ति ने देखा, अरे ये जो लता है ना, इसके पत्तों में अगर इसे भिगो करके सड़ा दिया जाए और फिर उसे पिए, बड़ा आनंद आता है। नशा है कोई सोम की लता, काहे की लता, इसमें बड़ा मजा आता है। तो मादकता की ओर लोग बढ़ने लगे, भिन्न भिन्न प्रकार से मदिरा बनाए जाने लगे और आगे बढ़े। गांजा है, अफीम है, इत्यादि इत्यादि नशे की चीज़ें। तो समझदार वाले लोगों ने, समझ वाले लोगों ने एक बात और जड़ी, सुरा मेरय मज्ज, मद्य की, नशे पते की कोई चीज़ नहीं ग्रहण कर सकते। तो पांच हुए। फिर देखा कि नशा पता केवल इन मादक पदार्थों में ही नहीं है। कोई आदमी जुए के लत में पड़ जाता है, उतना ही नशा जुए का होता है, पागल हो जाता है, जुए में फंस गया, जुए की आदत डाल ली, अब चाहे जैसे दुष्कर्म करेगा, जैसे नशे पते की आदत डाल ली, तो खूब जानता है कि वो चारों शील मुझे पालन करने हैं, मेरे लिए भी हितकर हैं, औरों के लिए भी हितकर हैं, फिर भी उनको तोड़ता है, क्योंकि अपने मन का मालिक नहीं है, वो मदिरा मालिक हो गई, ये गुलाम हो गया मदिरा का। ठीक इसी प्रकार अब जुए का गुलाम हो गया, तो उसके साथ जोड़ा प्रमाद ठाना, प्रमाद के जितने स्थान हैं, प्रमाद की जो बातें हैं वो सब विरमणी, उनसे विरमण करो, दूर रहो, विरत रहो, विरत रहो। पांच शील हुए। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो देखा एक और नशा है भाई, और वो तो शराब से भी बड़ा नशा है, धतूरे से भी बड़ा नशा है, गांजे से भी बड़ा नशा है। जब धन आता है तो धन का नशा सबसे बड़ा नशा, आदमी होश खो बैठता है, ऐसा अहंकार जगाता है, औरों को इस कदर हेय दृष्टि से देखता है, ऐसा अपमान लोगों का करता है, इतने अहंकार के मारे कि ये धन मैंने कमाया है, मेरे बुद्धि के बल पर कमाया है, मेरे परिश्रम पराक्रम के बल पर कमाया है, ये सारे गए गुजरे लोग हैं इसलिए गरीब हैं, दरिद्र हैं, बड़ा अहंकार जगाता है। अब बड़ी कठिनाई है, एक गृहस्थ हो तो अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे मेहनत करके, मजदूरी करके, ईमानदारी के साथ धन कमाना बहुत आवश्यक है। कोई निर्धन हो, गृहस्थ निर्धन हो, तो यह अच्छी बात नहीं, धर्म की बात नहीं। वैसे ही जैसे ही कोई सन्यासी धनवान हो, यह अच्छी बात नहीं, धर्म की बात नहीं। तो गृहस्थ होने के नाते धन का उपार्जन करना भी जरूरी, और धन का उपार्जन करे तो ऐसा नशा आ जाए तो क्या करे, तो रास्ता ढूंढा नशा न आए। धन कमाना आवश्यक है, इससे राष्ट्र का कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है, उन्नति होती है हर प्रकार से देश की, लेकिन नशा नहीं आए। नशा आता है तो पहले तो अपनी ही हानि करता है, सबसे बड़ी तो अपनी हानि होती है। एक कहानी चलती है अपने यहाँ, एक कोई बहुत बड़ा सेठिया किसी बड़ी नगर का, बम्बई का होगा, कलकत्ते का होगा, कहीं का होगा, अब धन के पीछे ऐसा व्याकुल, धन कमाए धन कमाए, वो जीवन का एक ही लक्ष्य, धन कमाए धन कमाए, हर किसी से एक इंच ऊंचा रहूं मैं, दूसरे से कहीं नीचा ना हो जाऊं। ऐसा रैट रेस एक चूहों किसी घुड़दौड़ चल पड़ी, न रात को चैन नींद है, न दिन को चैन है, व्याकुलता ही व्याकुलता, टेंशन पर टेंशन, हाइपर टेंशन। तो डॉक्टर कहने लगे, अरे तू पागल हो गया, ऐसी अवस्था तेरी रही, इतना तेरा प्रेशर हाई रहता है, न जाने कब पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। तो बेचारा घबराया, न जाने कब हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, और घबराया, तो क्या करे। अब बेचारे डॉक्टर के पास कोई धर्म की दवा तो थी नहीं, उसने अपनी ओर से जो समझ थी वैसा उसे उपदेश दिया कि देख भाई, ये भाग दौड़ से थोड़े दिनों के लिए भाग दौड़ से छुट्टी पा करके किसी गांव में चला जा, महीने दो महीने वहाँ आराम से रह, भूल जा अपने व्यापार को, ये जो दौड़ लगा रहा है धन कमाने की, धन कमाने की, थोड़ी देरी से भूल, देखो तुझे बड़ी शांति मिलेगी, ये तेरे रोग कम होते चले जाएंगे। तो घबराया हुआ था चला गया, गया अपने गाँव में, गाँव है बड़ी शांति है चारों ओर, रोज देखता है कि दोपहर को एक आदमी घुटने तक की धोती बांधे हुए, ऊपर से नग्न, सिर पर एक अंगोछा बांधे हुए एक पेड़ के किनारे बैठा है और बांसुरी बजाता है, और सामने गायें चढ़ती हैं। एक दिन देखा, दो दिन देखा, नहीं रहा गया उसका अहंकार न धन कमाने का, तो जाके कहता है, तो बड़ा मूर्ख है रे, बड़ा निकम्मा है, बड़ा आलसी है, काम क्यों नहीं करता, काम करेगा तो पैसा कमाएगा। काम करता हूँ भाई, ये देखो ये चार गौवें हैं ना, उस सेठ की है, इनको चराता हूँ और उससे मेरा गुजारा होता है। दूसरे दिन फिर आया, अरे ये चार ही गौवें चराता है, ऐसी 10-20 गौवें लेके चराना तो और पैसा कमा लेगा। और पैसा कमा लूँगा तो क्या करूँगा उस पैसे का। अरे क्या करोगे उस पैसे के, उससे और ज़्यादा गौवें लोगों के लिए आओगे, बड़ा काम करोगे, और पैसा हो जाएगा, उससे एक अपने गाँव गई गाय खरीद लोगे। अपने गाय खरीद लूँगा तो क्या हो जाएगा। अरे तेरी गाय होगी तो उसका दूध तुझे मिलेगा, अब तो इन गायों का दूध गाय के मालिक ले जाते हैं, तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें तो वेतन मिलती है, तो अपनी गाय का दूध मुझे मिल जाएगा तो क्या होगा। अरे बड़ा मूर्ख है, तेरी गाय का दूध तुझे मिल जाएगा तो बेच उसे, उससे जो पैसा आएगा वो इकट्ठा कर ले, एक गाय और खरीद ले, एक गाय और खरीद लो, तब क्या होगा। अरे फिर उसका दूध बेचना, 2 गाय 3 गाय 4 गाय 10 गाय, अरे तो क्या हो जाएगा, 10 गाय हो जाएगी तो। अरे जब 10 गाय तेरी हो जाएगी तो आराम से चैन की बंसी बजाना। वो कहता है, चैन की बंसी तो अभी बजा रहा हूँ, तू नहीं बजाता भाई चैन की बंसी, बड़ा व्याकुल है ना, व्याकुल ही व्याकुल, पागल हो गया, केवल धन कमाना धन कमाना, न उसका कोई सदुपयोग है, न उसका कोई सुख है, न रात को नींद आती है, न दिन को चैन पड़ती है, क्या हो गया, क्योंकि धर्म भूल गए ना। गृहस्थ को धन कमाना चाहिए, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, बुद्धि के साथ कमाना चाहिए, लेकिन यूं पागल नहीं हो जाना चाहिए। तो समझदार लोगों ने समझाया, देख भाई जो धन तेरे घर में आए समझता रहे, कैसे आया मेरे घर में, सारे समाज से आया, मैं जो धंधा करता हूँ उससे मेरे पास जो पैसा आता है इन कंज्यूमर से आता है, उपभोक्ताओं से आता है, समाज की ओर से तेरे पास ये धन आया तो ये सारा धन तेरा है ऐसा मत समझ, इसका सम विभाग कर। तब तक ये दान शब्द नहीं चला था मनुष्यों की जाति में, सम विभाग कर माने बांट, इसका हिस्सेदार और भी है, तू अकेला नहीं है। जब बांटना शुरू करेगा तब समझेगा कि भाई इसने मेरा नहीं औरों का भी हक है, इसमें औरों का भी हक है, मैं जो कमाता हूँ उसके और भी हकदार हैं। देखो अनेक लोग कितने दुखियारे हैं, इनको कैसे सुख मिल जाए, इनका दुख कैसे दूर हो जाए, इसमें मेरा धन कैसे काम आ सके, तो अहंकार जरा कम होगा। मैं कमाता हूँ केवल अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही नहीं, मैं औरों के लिए भी कमाता हूँ, औरों के लिए भी कमाता हूँ। जब ये भाव आना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा भी आना शुरू हुआ, तो समझो कि वो जिस गलत रास्ते अहंकार के मारे जा रहा था वो कम होने लगा, कम होने लगा, अब उसे ठीक रास्ता मिलने लगा। तो ये अपरिग्रह की बात भी साथ जोड़ी गई कि भाई परिग्रह परिग्रह, संचय संग्रह, संचय संग्रह करके कहीं पागल मत हो जाना। बने नियम तो बने, लेकिन कोई समझे कि राज्य के डंडे से लोग नियम पालन करने लगेंगे, ऐसा होता नहीं। तो जो धर्म के गुरु हुए उन्होंने समझाना शुरू किया, अपने ढंग से समझाया। जो भी महापुरुष हुए, संत हुए, अरहंत हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने समझाया लोगों को कि शील क्यों पालन करना चाहिए। डंडे की बात नहीं, समझावन की बात। तो जो लोग जिस तरह की बुद्धि वाले थे उनकी बुद्धि का जैसा स्तर था उनको वैसे समझाया। कोई बहुत बाल बुद्धि वाले बच्चों की तरह, कोई कुमार बुद्धि वाले, कोई युवा बुद्धि वाले, कोई प्रौढ़ बुद्धि वाले, कोई वृद्ध बुद्धि वाले, कैसे समझेंगे, उनको उसी प्रकार समझाया। तो जो बाल बुद्धि वाले थे उनको यूँ समझाया, झूठ नहीं कहा, झूठ कहेंगे तो महापुरुष कैसे होंगे, उनको समझाया कि देख तू ये शील पालन नहीं करेगा, सदाचार नहीं पालन करेगा, तू दुराचार का जीवन जिएगा, शरीर और वाणी से जो काम नहीं करने हैं वो करेगा, तो जानते हो क्या होगा, मरने के बाद तुझे घोर नरक मिलेगा। और उस नरक की व्याख्या ऐसी व्याख्या की कि सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाएं। तो कोई कहे अच्छी बात भाई, जरूर पालन करूंगा, मुझको नरक में नहीं जाना, पालन करूंगा। और इसी प्रकार ये भी समझाया अगर पालन करेगा, ठीक तरह से पालन करेगा, तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में ये सुख ये आनंद ऐसा ऐसा ऐसा, स्वर्ग सुनकर के मुंह में पानी आए तो भाई मानूंगा। जैसे छोटे बच्चे को कोई कहे ठीक से पढ़ेगा तो ये कैडबरी की गोली मिलेगी, नहीं पढ़ेगा तो नहीं मिलेगी, डंडा मिलेगा, तो वो इसी मारे काम करे। तो इस बुद्धि वाले जो लोग थे उनको इस प्रकार समझाया गया। जरा और ऊंची बुद्धि वाले लोग थे उनको समझाया गया, देख भाई तू सोच के देख, तू सोच के देख कि कोई तेरी हत्या करे तो तुझे अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो तू किसी की हत्या करेगा उसको कैसे अच्छा लगेगा, बात तो ठीक है, उसको कैसे अच्छा लगेगा। कोई तेरी बहुत प्रिय वस्तु चुरा ले तो तुझे अच्छा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो तू किसी की प्रिय वस्तु चुरा ले तो उसे भी तो बुरा लगेगा ना, हाँ बुरा लगेगा। कोई तेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यभिचार कर ले तुझे बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। तो तू किसी के परिवार के सदस्य के साथ व्यभिचार करे तो उनको बुरा लगेगा ना, जरूर बुरा लगेगा। कोई तुझे झूठ बोल के ठग ले तुझे बुरा लगेगा ना, तुझे कोई कड़वी बात बोले बुरा लगेगा ना, कोई तेरी निंदा करे बुरा लगेगा ना, कोई तेरी चुगली करे बुरा लगेगा ना। तो भाई इसी प्रकार तू किसी को झूठ बोल के ठगे, किसी की निंदा करे, चुगली करे, कड़वी बात बोले, उनको बुरा लगेगा ना, बात तो ठीक है। तो समझ भाई, जो बात तुझे बुरी लगती है वही बात औरों को बुरी लगती है। जो काम तू चाहता है कि तेरे प्रति कोई नहीं करे वैसे काम तू भी दूसरे के प्रति नहीं कर, समझ की बात। कुछ लोगों की ये बात समझ में आई, बात तो ठीक है भाई। और कुछ लोगों को समझाया, भिन्न भिन्न तरीके समझाने के, क्यों शील का पालन करोगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है, समाज की व्यवस्था, समाज की शांति बनी रहनी चाहिए, अन्यथा तू भी तो समाज का एक अंग है, समाज की सारी व्यवस्था टूट जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा समाज हो जाएगा तो तू भी तो दुखी हो जाएगा। मानो चारों ओर तूने आग लगा ली और उस आग के बीच में बैठा है, वो आग के तपन तुझे भी तो लगेगी, तुझे शीतलता कहाँ से मिलेगी, तू भी तो संतापित होगा। यूं बात समझ में आई, ठीक है, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में आग लगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में अशांति फैले, क्योंकि समाज में फैली हुई अशांति मुझे भी अशांत बनाएगी। ये बात समझ में आई। ये ऐसे लोगों को समझाना पड़ा जो कि स्वर्ग नरक की बात नहीं मानने वाले, ऐसे लोग भी हुए उस समय जो नहीं मानते। अरे मरने के बाद क्या पड़ा है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म न विद्यति, जल गया, खाक हो गई काया, अब क्या हैगा पुनर्जन्म। यावत् जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे जैसे हो खूब सुख से जियो, चाहे ऋण लो, चोरी करो, कुछ भी करो, सुख से रहो। ऐसे लोग भी थे, तो उनको इस तरह से बुद्धि के स्तर पर समझाने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, जो लोग बहुत समझदार थे उनको और आगे समझाया, बहुत गहरी बात समझाई कि देख तू अपने भीतर देखना सीख, इसी को भी प्रश्न कहा गया, अपने भीतर देखना सीख। जब तू किसी की हत्या करता है तो हत्या होने के पहले तेरे भीतर क्रोध जागता है कि नहीं, बिना क्रोध जागे, बिना द्वेष जागे, बिना दुर्भावना जागे, हंसते मुस्कराते हुए कौन किसी की हत्या कर देगा। बहुत क्रोध जगाना पड़ता है, बहुत द्वेष, बहुत दुर्भावना। तो कहा बात तो ठीक है, मन में द्वेष नहीं जगाऊं, क्रोध नहीं जगाऊं तो हत्या कैसे करूंगा। और देख अंदर गहराइयों से, विपश्यना से यही सीखेगा। अंदर देख, जब जब क्रोध जगाता है कि द्वेष जगाता है कि दुर्भावना जगाता है, कितना व्याकुल हो गया। क्रोध भी जगाए और भीतर बहुत शांति मिले, बड़ा सुख मिले, ऐसा होता नहीं ना, करके देख। तो जब जब क्रोध जागता है, देखता है, सचमुच बड़ा व्याकुल हुआ, बड़ा व्याकुल हुआ। तो बात समझ में आई, पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। अरे दूसरे की हत्या तो पीछे करेगा, पहले अपनी हत्या कर लेगा, अपनी सुख शांति की हत्या कर लेगा, अपनी हानि कर लेगा। क्रोध जगाते ही अपनी हानि होने लगी, अपनी सुख शांति की हत्या होने लगी, दूसरे की हत्या तो कब करेगा। ठीक इसी प्रकार चोरी करने के पहले लोभ जगाना पड़ेगा, व्यभिचार करने के पहले वासना जगाना पड़ेगी, झूठ बोलने के पहले, कड़वी बात बोलने के लिए पहले अहंकार जगाना पड़ेगा, कोई लोभ जगाना पड़ेगा, कोई ना कोई विकार जगाना पड़ेगा। विकार जगा कि तू व्याकुल हुआ, विकार जगा कि तू व्याकुल हुआ, तो कुदरत का नियम है, कोई पक्षपात होता नहीं। तू जैसे ही तूने धर्म की हत्या की तो धर्म तेरी हत्या करने लगेगा। धर्म एव हतो हन्ति, तूने धर्म की हत्या की, धर्म तेरी हत्या करने लगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, तूने धर्म की रक्षा की, धर्म तेरी रक्षा करने लगा। ये विपश्यना किए बिना बात समझ में आती नहीं। केवल बुद्धि बुद्धि से हजार कहले मैं समझ गया नहीं समझा, अंदर जाना शुरू करता है तो ऐसे लोग जो बुद्धि में बहुत आगे बढ़ गए थे उनको इस तरह से धर्म समझाया गया कि देख, जब जब शरीर या वाणी से कोई दुष्कर्म करता है तो मन में मैल जगा के करता है, मन में विकार जगा के करता है, और जब जब विकार जगाता है तब तब कुदरत तुझे दंड देती है। ये नियम है, ये प्रकृति है, ये हुकुम रजाई है। इस हुकुम रजाई के अनुसार तू नहीं चलेगा, तू दुखी पहले होगा, औरों को दुखी पीछे बनाएगा, तो तू अपनी हानि करने लगा। कोई चाहता नहीं अपनी हानि करनी, कोई अपने को दुखी बनाना नहीं चाहता, लेकिन होश नहीं है, किसी पर गुस्सा आ गया, तो यही दिखता है कैसे इसे मार दूं, किसी भी वस्तु के प्रति लोभ जाग गया तो यही दिखता है कैसे उसे चुरा लूं, तो अपने भीतर क्या होने लगा इसको देखना भूल गया, तो धर्म को देखना भूल गया, धर्म का दर्शन करना भूल गया, सत्य का दर्शन करना भूल गया, तो सच्चाई नहीं समझ में आई। सच्चाई समझ में आए तो विपश्यना करे तो बात समझ में आए कि मैं शील सदाचार का पालन करता हुआ किसी पर एहसान नहीं कर रहा। ऊपर ऊपर से तो यूं लगता है कि जो आदमी सदाचार का जीवन जीता है वो समाज के अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं देता, उनकी सुख शांति भंग नहीं करता, तो मानो सारे समाज पर बड़ा एहसान कर रहा है। लेकिन ये गहराई वाली बात धर्म की जब समझ में आने लगे तो समझता है कि मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ। शील सदाचार का जीवन जीते हुए मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ, किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैं विकार नहीं जगाता हूँ, मैं शरीर और वाणी से दुष्कर्म नहीं करता, इसका मतलब विकार नहीं जगाता, प्रकृति मुझे दंड नहीं देती, कुदरत मुझे दंड नहीं देती, मैं सुख शांति का जीवन जीता हूँ। मैं सुख शांति का जीवन जीता हूँ तो औरों के लिए भी सुख शांति का वातावरण निर्माण करता हूँ। बस जीना आ गया तो किस पर एहसान है, अपने आप पर एहसान है। धर्म धारण करना शुरू करे, धर्म हमारा रक्षक हो गया। धर्मो रक्षति रक्षित है, हमने रक्षा कर ली धर्म की, यही धर्म है। चित्त को मैल से मुक्त रखना, विकारों से मुक्त रखना, ये धर्म है। तो हमने विकारों से मुक्त रखा, धर्म की रक्षा की, धर्म हमारी रक्षा करने लगा, हमको कभी दुख नहीं आने देगा, अशांति नहीं आने देगा, बेचैनी नहीं आने देगा। हमने धर्म की हत्या कर दी, बौद्ध धर्म की नहीं, जैन धर्म की नहीं, ईसाई धर्म की नहीं, सिख धर्म की नहीं, धर्म की हत्या कर दी, कुदरत के कानून की हत्या कर दी, माने हमने विकार जगा लिया, तो धर्म हमारी हत्या करेगा, धर्म हमें दंड देगा। अरे इतनी सीधी सी बात धर्म की, और ये संप्रदायवादियों में उलझ करके, इन दर्शनवादियों में उलझ करके धर्म का सही अर्थ ही भूल गए, उसे धारण करना भूल गए। और धारण किए बिना धर्म का कोई लाभ नहीं होता, केवल बुद्धि के स्तर पर समझ करके भी रह जाए, श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार करके भी रह जाए, पर धारण नहीं करे कोई लाभ होने वाला नहीं। लाभ तभी होता है जबकि कोई धर्म धारण करता है। एक कहानी चलती है अपने यहाँ, एक आदमी बड़ी भूख लगी तो पास के किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, जगह मिल गई, बैठ गया। बैरे ने आकर के मेनू का कार्ड सामने रखा, मेनू का कार्ड पढ़ता है, ओ आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, बहुत उम्दा भोजन बना है। पढ़ते पढ़ते मुंह में पानी आता है। एक घटना घटी, बैरे को बुला के ऑर्डर देता है, अमुक अमुक चीज़ मेरे लिए लिया। अब वो लाने में कुछ तो समय लगेगा, इतनी देर आंख पसार के देखता है चारों ओर, और लोग जो बैठे हैं जिनको भोजन परोस दिया गया वो भोजन खा रहे हैं, तो भोजन खा रहे हैं तो उनके चेहरे का भाव देखता है। जिसको भोजन बहुत अच्छा लगता है उसके चेहरे का भाव ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छा भोजन है, उसके चेहरे का हाव भाव कहता है कि भोजन बहुत अच्छा है, तो समझता है कि सचमुच आज का भोजन बहुत अच्छा है, देखो इतने लोगों को स्वादिष्ट लग रहा है। दूसरी घटना घटी, अब तीसरी घटना घटी, बैरे ने ला के भोजन परोस दिया, स्वयं उसने चक्कर देखा, तो पहला क्या था, सुनी सुनाई बात थी, पढ़ी पढ़ाई बात थी। एक बैरे ने ला करके मेनू का कार्ड लिखा, उसे हमने पढ़ा, हमारा मुंह तो मीठा नहीं हुआ ना उससे, हमको तो उसका स्वाद नहीं आया, केवल पढ़ा हमने। दूसरी घटना घटी, हमने चिंतन मनन किया बुद्धि से, सचमुच भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होगा क्योंकि इन लोगों को स्वादिष्ट लग रहा है, ऐसा इनके चेहरे का हाव भाव कहता है। यूं बुद्धि द्वारा, तर्क द्वारा समझ करके ये स्वीकार किया कि भोजन आज का उम्दा होगा, अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा, तो भी चखा तो नहीं ना। ये जो तीसरी घटना घटी कि अपनी जबान पर वो भोजन रखा, तो सही माने में मालूम हुआ कि स्वादिष्ट है। ऐसे ही धर्म की बात, केवल पुस्तकें पढ़कर कोई आदमी समझे कि धर्म का लाभ ले लूँगा, धर्म का रस चख लूँगा, बेचारा धोखे में है, कुछ नहीं मिलेगा। केवल प्रवचन सुन करके मैं धर्म का लाभ ले लूँगा, कुछ नहीं मिलेगा। अथवा चिंतन मनन करके सचमुच जो बात कही गई कितनी सही है, कितनी ठीक है, मैं खूब स्वीकार करता हूँ। धर्म तो ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, मुझको भी ऐसा ही होना चाहिए, इसी प्रकार धर्म का जीवन जीना चाहिए। बुद्धि के स्तर पर समझ गया, कुछ नहीं मिला। ये सारी बातें, इनका गहरा असर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा असर होके निकल जाता है। जब चखने लगा तो मालूम हुआ, अरे सचमुच धर्म कितना कल्याणकारी है, कितना स्वादिष्ट है। ऐसी ही एक और कहानी चलती है अपने यहाँ। एक आदमी बहुत बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे देख दाग करके दवा का पुर्जा लिख दिया। घर आया, डॉक्टर पर बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, तो उसकी कोई चित्र रखता है घर में या उसकी कोई मूर्त रखता है और उस पर फूल चढ़ाता है, धूप चढ़ाता है, नैवेद्य चढ़ाता है, हाथ जोड़ के 3 बार नमस्कार करता है और फिर वो पुर्जा निकाल के पाठ करता है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह। लेता नहीं औषधि, लेता नहीं, और एक कदम आगे बढ़ता है, उस डॉक्टर के पास जाके कहता है कि आपने क्या लिख दिया, इससे मेरा रोग कैसे दूर होगा। तो डॉक्टर समझाता है, देख तुझे अमुक रोग है और उस रोग का ये कारण है, तेरे भीतर ये अमुक कीटाणु चले गए, जब तक ये कीटाणु रहेंगे तू रोगी रहेगा, और जो मैंने दवा दी है ना ये इन कीटाणुओं का नाश करेगी, तो कीटाणु नहीं रहेंगे तो ये रोग नहीं रहेगा, तू स्वस्थ हो जाएगा। बुद्धि के स्तर पर बात बहुत समझ में आई। अब घर में आया तो डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, हर पड़ोसियों को कहता फिर मेरा डॉक्टर सबसे अच्छा, मेरा डॉक्टर सबसे अच्छा, अरे तुम्हारे डॉक्टर गए गुजरे। फिर भी दवा लेता नहीं, केवल झगड़ता है लोगों से। अरे भाई, हर महापुरुष जब संसार में पैदा होता है तो एक डॉक्टर की तरह पैदा होता है, एक चिकित्सक की तरह, एक महाभिषक की तरह, एक वैद्य की तरह, और इन रोगी लोगों को दवा बांटता है। हम दवा लेते नहीं, उसका चित्र रखते हैं, उसकी मूर्त, कोई दोष की बात नहीं, चित्र रखना चाहिए, मूर्त रखनी चाहिए, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन उतना ही करके रह जाए, या उसकी वाणी का पाठ करते हैं तो उस पुर्जे का पाठ करके रह गए, पाठ करने में दोष नहीं, लेकिन अगला कदम होना चाहिए कि फिर उसे धारण करें। अगर धारण नहीं कर पाए तो कुछ नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो धारण करने के लिए पहला कदम कि शील सदाचार का जीवन सीखें, शील सदाचार का जीवन कैसे जिए ये जीना सीखें। लेकिन इसमें भी कठिनाई, आदमी बुद्धि से खूब समझता है, इतनी बातें धर्म का सुनता है, और अपने यहाँ तो धर्म की इतनी चर्चा, बचपन से ही धर्म की चर्चा सुनते हैं, धर्म की चर्चा सुनते हैं, कोई इस पंडित जी के पास जाके सुनता है, कोई इस गुरु महाराज के पास जाके सुनता है, कोई मौलवी जी के पास जाके सुनता है, कोई पादरी जी के पास जाके सुनता है, खूब धर्म की बातें सुनता है, तो धर्म की बातें तो बहुत सुनी, तो समझ तो गया बुद्धि से कि मुझको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती है। लेकिन कैसे नहीं करना चाहिए? एक शराबी खूब समझता है, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, मुझे शराब से दूर रहना चाहिए, अपने बच्चे को दूर रखता है, कहीं उसको शराब पीना लत लग जाए, फिर भी समय आता है तो पी लेता है। एक जुआरी खूब जानता है मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए, समय आता है खेल ही लेता है। एक व्यभिचारी खूब जानता है मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, समय आता है व्यभिचार कर ही लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? महाभारत का एक प्रसंग है, दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम् न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूं कि धर्म क्या है, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती उस ओर, क्या करूं। खूब जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे निवृत्ति नहीं होती, मैं क्या करूं। झूठ बोल गया, जानता नहीं है केवल मानता है। जिस दिन जानने लग जाएगा उस दिन धर्म की ओर अपने आप प्रवृत्ति हो जाएगी। जानना कहते हैं अपने भीतर अनुभूति से जानने को जानना कहा जाता था। मानता है केवल, बचपन से सुन रहा है ना, तो उसके हथियार, दुर्योधन किसको कहते हैं, योद्धा, उस योद्धा का हथियार काम का नहीं तो हारेगा वो। तो धर्म के रास्ते चलने के लिए जो हमारे मानस का हथियार है वो काम का नहीं, तो कैसे धर्म के रास्ते चलेगा? धर्म को उसने जाना नहीं है, केवल माना है। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। जिस दिन जान जाएगा उस दिन उस सुयोधन हो जाएगा। अब बात समझ में आने लगेगी कि मैं अधर्म की ओर क्यों जाता हूं, मैं धर्म की ओर क्यों नहीं जाता। मेरा मन वश में नहीं है ना, मैं अपने मन का मालिक नहीं हूं। मन मेरा मालिक हो गया, वो जैसे नचाता है वैसे नाचता हूं। तो भाई पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि अपने मन की मलकियत हासिल करनी पड़ेगी। मैं अपना मन का मालिक बन जाऊं, गुलाम नहीं बनूं। इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है। कल इस पर चर्चा करेंगे कि हम अपने मन के मालिक कैसे बने। लाभ तभी होगा इस धर्म सभा में आकर के केवल वाणी विलास होके रह जाए, केवल श्रुति विलास होके रह जाए, केवल वाक विलास होके रह जाए, तो लाभ नहीं हुआ। ये सारा का सारा धर्म का सुनना, धर्म का समझना हमारे भीतर प्रेरणा जगाए कि भाई ये रस तो चख के देखना है, ये तो चख के देखना है। तब तो धर्म की चर्चा बड़ी कल्याणकारिणी होती है, धर्म का चिंतन बड़ा कल्याणकारी होता है। अन्यथा सारा जीवन यही करते चले जाएंगे। आज यहाँ प्रवचन सुना, कल वहाँ प्रवचन सुना, परसों वहाँ सुना, आज ये चिंतन किया, कल वो चिंतन किया, चख के नहीं देखा। तो चख के देखें, ऐसी प्रेरणा सबके भीतर जागे। आज की धर्म सभा में जो जो आए हैं वो धर्म का रस चखने के लिए अपने भीतर एक ऐसी तड़प पैदा करें कि हमें 10 दिन अपने जीवन का समय निकाल करके धर्म कैसे धारण किया जाए, मन को कैसे वश में करना आ जाए, मन को कैसे विकारों से विमुक्त करना आ जाए, ये विद्या मुझे सीखनी है। ये प्रेरणा लेकर जाएं, सचमुच बड़ा मंगल होगा, सचमुच बड़ा कल्याण होगा। जो जो आज की धर्म सभा में आए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। सुना है विपश्यना के लिए 10 दिन लगता है, परंतु मुझे समय मिलता नहीं। विपश्यना कैसे करें छोटे में समझा दीजिए। आजकल इंस्टेंट कॉफ़ी बनती है, इंस्टेंट ये बनता है, तो विपश्यना भी इंस्टेंट, बस बैठे बैठे समझा दो हम कर लेंगे। क्या करें भाई, होता नहीं। ऐसा होता तो हम सारी दुनिया में जो घूम घूम के 10 दिन का शिविर लगाते हैं ये न लगा करके ऐसे प्रवचन दे देते, समझा देते। होता नहीं भाई, एक बार तो जीवन के 10 दिन देने ही होंगे, क्योंकि मन का बहुत गहरा ऑपरेशन करना पड़ता है। और उन गहराइयों में जो हमने विकार इकट्ठे कर रखे हैं उनका निष्कासन, उनको बाहर निकालने का काम है, बड़ा गंभीर काम है। एक बार इस विद्या को सीखने के लिए तो किसी मार्गदर्शक के पास जाकर के, किसी अनुकूल स्थान पर जाकर के तपना ही पड़ता है। इससे कम में बात बनती नहीं। प्रयत्न करके देखा, 7 दिन के शिविर, 3 दिन के शिविर, हुआ नहीं कुछ, लोगों को उससे पूरा लाभ नहीं मिला, इसलिए 10 दिन के शिविर लगाने पड़ते हैं। चले आइए, 10 दिन अपना खोगे नहीं। 10 दिन पूरा करने के बाद समझोगे कि अगर ये नहीं करते तो जीवन में एक बहुत बड़ी विद्या से वंचित रह जाते। अपना ज्ञान जगाने के लिए मजबूर होकर जब कोई आदमी किसी हिंसक जानवर जिसने उस आदमी को हमला करता है को हथियार प्रयोग करके मार डालता है, तो क्या उस आदमी को प्राणी हिंसा के साथ पाप लगेगा? हत्या तो हत्या है। एक अवस्था धर्म की इतनी ऊंची अवस्था आती है कि जहाँ चित्त इतना निर्मल हो जाए कि उसमें मैत्री ही मैत्री, करुणा ही करुणा जागे, तो हिंसक से हिंसक प्राणी, हिंसक से हिंसक पशु अपने आप शांत हो जाता है, वो हम पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन जब तक उस अवस्था पर नहीं पहुँचते तब तक तो अपने बचाव के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन करते हुए प्रयत्न इस बात का करेंगे कि मन में क्रोध नहीं आए, द्वेष नहीं आए, उसके प्रति मंगल कामना करते हुए ही ऐसा काम करना पड़ेगा। जब कोई सत्य का शील पालन करने वाला व्यक्ति ने कोई भागता हुआ आया अमुक व्यक्ति को, उसका ध्यान बचाने के लिए अपने घर में शरण देता है, तब उस अमुक व्यक्ति को माने ये उद्देश्य उसका पीछा करता हुआ दूसरा व्यक्ति आकर उस सत्यवान व्यक्ति से पूछता है, क्या आपने अमुक व्यक्ति को भागता हुआ देखा है? तो उस सत्यवान व्यक्ति ने क्या जवाब देना चाहिए? सत्य बोलेगा तो उस व्यक्ति का जान जाता है, झूठ बोलेगा तो शील पालन नहीं होता। सुंदर प्रश्न है, ऐसा जीवन में होता रहता है। इसका निर्णय हर व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार, मेरी चित्त की चेतना क्या है? मैं झूठ बोल करके किसी को ठगना चाहता हूँ? मैं झूठ बोल करके किसी की हानि करना चाहता हूँ? अगर ये चेतना है एकदम उससे बचना चाहिए, और ये चेतना नहीं है तो परिस्थितियों वश अगर बोलना पड़ा तो उसे इतना बड़ा दोष नहीं मानते। लेकिन फिर कठिनाई ये होती है कि हर बार जब झूठ बोलेगा तो उसका कोई ना कोई न्यायीकरण करेगा, मुझको ऐसी परिस्थिति में झूठ ही बोलना पड़ा, झूठ नहीं बोलता तो और क्या करता, ऐसी आदत में न पड़ जाएं, इसके लिए सजग रहें। आपके नाम से ही आप हिंदू धर्म के जैसा लगते हैं, आप कैसे इस धर्म में पहुंचे? क्या करें भाई, हमारे माँ बाप ने ये नाम दिया और बड़ा अच्छा नाम दिया, सत्य नारायण। नारायण सत्य है कि नहीं हम नहीं जानते, पर सत्य जरूर नारायण है, अच्छा ही नाम दिया। अब वो हिंदू का भी नाम हो सकता है, किसी बौद्ध का भी हो सकता है, किसी जैनी का भी हो सकता है, इस जंजाल में क्यों पड़े? हमने धर्म सीखा है, जन्मे खूब कट्टर सनातनी हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, हिंदू परिवार में, लेकिन बात समझ में आने लगी तो अब धर्म ही धर्म प्रमुख हो गया। एक व्यक्ति भ्रष्टाचार करके धन कमाता है, संसारिक सुख भोग विलास करके चित्त को खुश कर लेता है, क्या वह व्यक्ति आपका कहा गया धर्म चित्त खुशी व शांति के धर्म में आता है? बिल्कुल नहीं, एक बहुत बड़ा धोखा है। आदमी शरीर और वाणी से दुष्कर्म करके कभी कभी यूँ समझता है कि मुझे बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख मिला, वो मानस के ऊपरी हिस्से में एक धोखे का जीवन जीता है। उसके अंदर गहराई से जब जाएगा तब देखेगा कि मैंने जो दुष्कर्म किया शरीर या वाणी से, उसने मुझे बेचैन बनाया, बहुत व्याकुल बनाया। भीतर का हिस्सा जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो बड़ा अशांत हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। विपश्यना इसीलिए करेंगे कि अपने भीतर की सच्चाई को जाने कि वस्तुतः मेरे भीतर क्या होने लगा ये काम करने से। यू सीम टू प्रीटी मच ग्लॉस ओवर द होलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ विपश्यना, इज इट इन कीपिंग विद द अप्रोच ऑफ महेश योगी टू गेट वाइड एक्सेप्टेंस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड? वी आर नॉट हियर टू कंडेम एनीबॉडी, दे आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स टू गेट द माइंड कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स टू प्यूरिफाई द माइंड, आई हैव गोन थ्रू डिफरेंट वेज, we will discuss some of them tomorrow. I have gone through different ways and I have found that many different techniques give the benefit at the surface level of the mind. And I have seen that with Vipassana you go to the depth of the mind, at the source, at the root level of the mind, and from there you start changing the behavior pattern. If the behavior pattern of your so-called unconscious mind is not changed, any purity that you bring at the surface level of the mind will be just temporary, it won't be very much helpful to you. धर्म और ईश्वर बीच समन्वय क्या है? धर्म ही ईश्वर है, जहाँ उसका दर्शन करने लगे ईश्वर का दर्शन अपने आप होने लगा। कैसे व्यक्ति को धार्मिक कहा जाएगा जो अपने विकारों से विमुक्त हो गया, उसके शरीर और वाणी के काम अपने आप अच्छे होने लगे, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कहा जाएगा। इस तो ईश्वर के अस्तित्व को कैसे स्वीकार करें? धर्म के अस्तित्व को स्वीकार कर लो, ईश्वर का अस्तित्व अपने आप स्वीकार हो गया। अपने भीतर धर्म का दर्शन करो, कुदरत के कानून का दर्शन करो, रित का दर्शन करो, सत्य का दर्शन करो, इसी से कल्याण होगा। धर्म तो सब एक है, लेकिन जो लेबल लगाया हुआ है धर्म, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम और कुछ, इनमें से कौन सा धर्म व्यवहारिक लगता है और क्यों? कोई सा भी ऐसा धर्म जिसके पीछे ऐसे विशेषण लगे हैं व्यवहारिक नहीं है, उसमें उलझन ज़्यादा है। इसलिए अपने आप को हिंदू कहने वाला हिंदू ही कहे, बौद्ध कहने वाला बौद्ध कहे, जैन कहने वाला जैन कहे, मुस्लिम कहने वाला मुस्लिम कहे, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। लेकिन धर्म जो इन सारे विशेषणों से अलग है, जो ही शुद्ध धर्म, उसको धारण कैसे करें? बस इस रास्ते लग गया तो हिंदू अच्छा हिंदू बन जाएगा, बौद्ध अच्छा बौद्ध बन जाएगा, जैन अच्छा जैन बन जाएगा। अरे जो अच्छा आदमी नहीं हुआ वो अच्छा हिंदू कैसे होगा, हिंदू बौद्ध अच्छा बौद्ध कैसे होगा, अच्छा जैन कैसे होगा? धर्म हमें अच्छा आदमी बनाता है, नेक इंसान बनाता है। कल आपने कहा था गौतम से पहले भी बहुत से बुद्ध थे और बाद में भी होंगे। गौतम के बाद अब कितने बुद्ध जन्म ले चुके हैं, कौन कौन हैं, कहाँ हैं, यदि अब तक जन्म न हुआ तो क्या कारण है? बुद्ध बनना उतनी सरल बात नहीं है, बहुत जन्म लगते हैं। अपने चित्त को निर्मल करते करते उसमें 10 गुण 10 पारमिताएं बढ़ाते 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 अवस्था आती है जबकि उसका अंतिम जन्म होता है। उस जन्म में सारे विकारों से मुक्त होकर के बोधि प्राप्त करके व्यक्ति मुक्त बन जाता है। गौतम बुद्ध के पहले भी इस तरह के हुए, बाद में भी होंगे, पर बीच में बहुत बड़ा अंतराल होता है, बहुत बड़ा समय जाता है। इस धर्म सभा में जितने आए हैं सब संपन्न वर्ग हैं, विपन्न वर्ग की उपस्थिति बहुत ही कम है। विपन्न वर्ग की सहभागिता के लिए, उन लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों का आध्यात्मिक उत्थान के लिए किस तरह का अवसर हम दे सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। धर्म सबके लिए होता है। जिस दिन धर्म केवल संपन्न लोगों का हो गया, समझो उस दिन धर्म दूषित हो गया। संपन्न हो कि विपन्न हो, हमें मन की विपन्नता से छुटकारा पाकर के मन को संपन्न करना है। एक धनवान व्यक्ति मन से बड़ा विपन्न है, एक विपन्न व्यक्ति धर्म मन से बड़ा संपन्न हो सकता है। सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। शिविरों में ऐसे अनेक लोग आते हैं जो झोपड़पट्टी के रहने वाले, जो सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे तो अपना पेट पालेंगे, तो बहुत बड़ा बलिदान करके आते हैं, 10 दिन शिविर में बैठते हैं और वही प्राप्त करते हैं जो एक धनवान व्यक्ति प्राप्त करता है। धर्म सबके लिए समान है। मैं कौन है, मन क्या है, इसका क्या फर्क है? विपश्यना करोगे तो इसी बात को देखोगे कि जिसको मैं किए जा रहा हूँ, ये मैं है क्या, और ये मन है क्या, और ये किस तरह काम करता है, और किस तरह हमारी अज्ञान अवस्था में गांठें बांधता है, और किस तरह हमारे भीतर बात समझ में आ जाए तो गांठें खोलने का काम शुरू कर देता है। विपश्यना में यही सीखोगे। माई फैमिली सेलिब्रेट सर्टन ओकेशंस लाइक दशहरा विच इंक्लूड्स एनिमल एंड फॉल सेक्रीफाइस। बींग ए विपश्यना स्टूडेंट, शुड आई रिफ्यूज टू अटेंड सच ओकेशंस इवन एट द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग माई फैमिली, और शुड आई अटेंड एंड जस्ट रिजेक्ट द पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेक्रीफाइस, और इफ आई अटेंड बींग ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस, वुड आई बी इनडायरेक्टली ब्रेकिंग द प्रिसेप्ट ऑफ नॉट किलिंग? यू बेटर डोंट किल। इफ अदर्स आर किलिंग, हैव कंपैशन फॉर देम, नो हेट्रेड। दे आर जस्ट स्लेव्स ऑफ द ट्रेडिशन, ए रॉन्ग ट्रेडिशन, सो बेटर हैव मेत्ता फॉर देम, लव, कंपैशन, गुडविल, एंड यू विल फाइंड दैट विद गुड वाइब्रेशन ऑफ यूअर्स स्लोली द सिचुएशन विल चेंज इन द फेवर ऑफ धम्म। हैज विपश्यना एनीथिंग टू डू विद महायान, वज्रयान, हीनयान? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज धम्मयान। What Vajrayana, what Mahayana, what Hinayana, if there is no Dhammayana, there is no Yana at all which will take us to the final goal. To reach the final goal, you must have Dhammayana. आजकल यहाँ पर एक प्रकार का धर्म के नाम पर संस्थाएं हैं, पर वहाँ पर धर्म के बारे में तो बहुत प्रवचन होता है, लेकिन ज्ञान क्यों गुप्त रहता है, क्यों सार्वजनिक होता है? लोगों को सुनने की एक बीमारी है, सुनने का एक लत लग गई। यहाँ सुने, यहाँ सुने, यहाँ सुने, तो जैसे आज ये सिनेमा देखा, कल वो सिनेमा देखा, यहाँ मन बहलाव किया, वहाँ मन बहलाव किया, धर्म को ये मन बहलाव का एक साधन बना लिया, तो भाई लाभ कैसे होगा? धर्म सुने बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे प्रेरणा जगा करके फिर धर्म का दर्शन करना सीखें, धर्म का रस चखना सीखें, तो सचमुच कल्याण होगा। क्या देवदत्त एक व्यक्ति था? सचमुच व्यक्ति ही था। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कल यही समझाएंगे। समाधि और प्रज्ञा के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें, कल और परसों यही काम करेंगे। आपके समाज में धर्म कैसे अधर्मियों ने ही खा लिया? हाँ, जब आदमी अधर्मी बन जाता है तो सबसे पहले धर्म की हत्या होती है, धर्म के नाम पर अपनी ही हत्या होती है, अपनी ही हानि होती है। मन को कैसे वश में रखना होगा, मन तो बहुत चंचल है, कल थोड़ा सा समझाएंगे, पर वस्तुतः तो काम करने से ही मन वश में आएगा, केवल बुद्धि से समझ जाने से नहीं होगा। क्या करने से दूसरों की हानि होती है, इस बात का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब जब अंदर देखना सीख जाओगे और अंदर देखते हुए ये समझने लगोगे अनुभूति से कि मेरे इस काम से मेरे भीतर बेचैनी आने लगी, मेरे भीतर व्याकुलता आने लगी, गहराइयों तक देखना आ जाएगा, व्याकुलता आने लगी, ये काम बुरा है, इससे अवश्य औरों की हानि होगी, शरीर का हो या वाणी का हो। जो आदमी अपने भीतर देखने लगा, वो सत्य को देखने लगा, धर्म को देखने लगा, उसके लिए सारी बात बड़ी आसान हो गई, उसके निर्णय हमेशा अच्छे होते हैं। हाउ डज द विपश्यना प्ले इन द रोल ऑफ आइडियाज दैट अराइज इन द माइंड? नथिंग रॉन्ग व्हेन द आइडियाज अराइज इन द माइंड, बट दे शुड बी गुड आइडियाज। एंड इफ यू जस्ट कीप ऑन अराउजिंग सच आइडियाज एंड यू डोंट इम्प्लीमेंट देम, इट वॉन्ट हेल्प। विपश्यना हेल्प्स यू टू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन माइंड, so that all the thoughts that come in your mind are healthy thoughts, wholesome thoughts, and you start implementing them in your life and you live a good life. Dharam jeevan mein utre to hi mangal hota hai, dharm ka keval chintan manan karke reh jaye to pura mangal nahi hota, dharm ke chintan manan se prerna milti hai, usse margdarshan milta hai, usse ji chahta hai ki hum dharm dharan karke dekhen, jaise menu ka card pada to ji chahta hai ki isko kha ke dekhen, दूसरा खा रहा है, हमने बुद्धि लगाई भोजन अच्छा है तो जी चाहता है कि हम खा कर देखें। ठीक इसी प्रकार धर्म को सुनना, उस पर चिंतन मनन करना बड़ी अच्छी बात है, पर वो हमारी प्रेरणा जगाए जिससे कि हम धर्म का रस चख कर देखें और अपना कल्याण साधें। जो जो आज की धर्म की सभा में आए सब धर्म का रस चख पाएँ और अपना मंगल साधें, अपना कल्याण साधें।